पृष्ठ संख्या 111 उत्तर काल सन 1719 ईस्वी में बादशाह बहादुर शाह के पौत्र मोहम्मद शाह रंगीले सिंहासनासीन हुए। वे अपने नाम के अनुरूप रंगीली मनोवृत्ति के श्रृंगारिक बादशाह थे। उनका शासनकाल सन 1719 से सन 1748 ईस्वी तक का रहा। यह काल संगीत कला एवं साहित्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके दरबार में आलम और घनानंद जैसे उच्च कोटि के कवि तथा महाकवि देव के शिष्य सदारंग जैसे संगीत शिरोमणि थे। पृष्ठ संख्या 112 रंगीले का शासनकाल सांगीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी माना जाता है, क्योंकि ध्रुपद धमार गायकी के साथ स्थान पर ख्याल, ठुमरी, दादरा, कव्वाली जैसे गायन शैलियां और वीणा के स्थान पर सितार जैसे नवीन तंतुवाद्य का प्रचार एवं विकास इसी काल में हुआ। उस्ताद नेमत खां सदारंग संगीत के युग पुरुष थे। वे परमिल खां के पुत्र, खुसरो खां के अग्रज और फिरोज खां अदारंग के चाचा, ससुर एवं गुरु थे। वे अपने युग के सिद्ध बीनकार तथा श्रेष्ठ गायक थे। उनके पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे। उनके परिवार में संगीत विद्या परंपरागत चली आ रही थी। महाकवि देव के उपरांत उन्होंने एक तातारी कव्वाल तथा बंगाली नटवे से भी शिक्षा ग्रहण की थी। यद्यपि ख्याल गायकी का पूर्व रूप हजरत अमीर खुसरो, ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर तथा जौनपुर के सुल्तान हुसैन शर्की के युग से ही प्रचार में आने लगा था, तथापि सदारंग ने इस गायकी को एक नवीन शैली तथा नया रूप दिया। उन दिनों गायकों के दो वर्ग प्रचलित थे, पहला कलावंत और दूसरा कव्वाल। कलावंत ध्रुपद गायकी की परंपरा से तथा कव्वाल ख्याल गायकी की परंपरा से संबंधित थे। ध्यान रहे कि आजकल के कव्वालों को सुनकर उस युग के कव्वालों की कल्पना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन दिनों राज दरबार में कव्वाल लोग जो ख्याल गाते थे उसकी शैली हजरत अमीर खुसरो की परंपरा से संबंधित थी। नेमत खां सदारंग यद्यपि परंपरा से कलावंत एवं वीणा वादक थे, किंतु तातार कव्वाल के शिष्य होने के कारण विरोधियों को पराजित तथा बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले को संतुष्ट करने के हेतु उन्होंने सहस्त्रों ख्यालों की रचना की। उन्होंने कव्वालों की परंपरा की ख्याल गायकी को एक नया रूप, नवीन शैली दी, जिससे ख्याल के विषय वस्तु में भारतीय श्रृंगार आ गया। रंगीले के दरबारी गायक फिरोज खां अदारंग जो उच्च कोटि के कलाकार थे, उन्होंने भी अनेक ख्यालों की रचनाएं की जो आज भी खूब प्रचार में हैं। विद्वानों के अनुसार उन दिनों की ख्याल गायकी में आज की शास्त्रीयता और नियमबद्धता का प्रमाण कम पाया जाता था। सुविधा के लिए ख्याल गायक राग के नियमों की उपेक्षा भी कर जाते थे। ख्याल गायन शैली का प्रचलन मुख्यतः नायिकाओं में होने के कारण उन दिनों ख्याल गायकी तथा उसके गायक गायिकाओं को इतना सम्मान नहीं दिया जाता था जितना कि ध्रुपद गायन शैली वालों को। इन गायक गायिकाओं की संगत बादशाह के सामने खड़े होकर करने का प्रचलन था, जो मृदंग के लिए असंभव एवं असम्माननीय था। अतः उन दिनों के मृदंग वादक ख्याल की संगत करना अपना अपमान समझते थे। ख्याल की तरह ही ठुमरी, दादरा, टप्पा, गजल, कव्वाली, कजरी, होरी आदि अनेक नवीन एवं श्रृंगारिक गायन शैलियां धीरे धीरे प्रचार में आने लगी। रंगीले के दरबार के प्रत्यक्षदर्शी इतिहासकार दरगाह कुली खां ने अपनी पुस्तक में ठुमरी की चर्चा नहीं की है। संभव है उन्होंने इस गायन शैली को महत्वहीन समझा हो। पृष्ठ संख्या 113। इन विविध गायन शैलियों के उपरांत तंतुवाद्यों के क्षेत्र में भी परिवर्तन का प्रारंभ हो चुका था। वीणा के स्थान पर सितार की झनकार रंगीले के दरबार में सुनाई देने लगी थी। आचार्य बृहस्पति के अनुसार सदारंग के छोटे भाई खुसरू खान ने तीन तार वाले नवीन तंतुवाद्य सहतार के तारों पर स्वर की गूंज को जिंदा करने का प्रयास किया था। सहतार की साथ संगत के लिए भी पखावज की गंभीर ध्वनि उपयुक्त न थी। अतएव इन सभी आवश्यकताओं एवं समस्याओं की पूर्ति के हेतु अभिजात संगीत में तबले का प्रवेश हुआ। तबले की उत्पत्ति कहाँ कैसे हुई तथा उसका आविष्कारक कौन था ये प्रश्न तबला वादकों एवं विद्वानों में आज भी एक पहेली बना हुआ है। यह सत्य है कि भारतीय संगीत में तबले का प्रवेश एक महत्वपूर्ण घटना है। इसके विषय में जो अनेक प्रचलित मत एवं किंवदंतियां हैं उनमें से कुछ की चर्चा अब हम आगे करेंगे। जैसा कि पूर्व में चर्चा की जा चुकी है, आज भी महाराष्ट्र के लोक संगीत में संबल नामक वाद्य का प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य की बनावट बहुत कुछ बायां तबला से मिलती जुलती है। अतः एक मत के अनुसार आज का तबला संबल वाद्य का परिष्कृत रूप है। कुछ लोगों का मत है कि तबले का उद्भव पंजाब प्रांत के दुक्कड़ नामक वाद्य से हुआ है। दुक्कड़ का अर्थ है दो, और वह वाद्य भी तबले के समान दो भागों में होता है। अतः इस मत के पोषक तबले का उद्भव इसी दो भाग वाले दुक्कड़ का परिष्कृत रूप बतलाते हैं। एक मत के अनुयायी तबले का जन्म ऊर्ध्वक एवं आलिंग से हुआ मानते हैं। भरतकालीन त्रिपुष्कर का जो वर्णन भरत के नाट्यशास्त्र में मिलता है उसके तीन अंग बतलाए गए हैं। पहला आंकिक, दूसरा ऊर्ध्वक, तीसरा आलिंग। आठवीं एवं नवीं शती के पश्चात त्रिपुष्कर के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। ऊर्ध्वक एवं आलिंग भाग हटा दिए गए और रह गया केवल आंकिक। आज मृदंग का जो स्वरूप प्रचलित है वह भरतकालीन त्रिपुष्कर का केवल आंकिक भाग है। अतः इस मत के पोषक यह मानते हैं कि खड़े रहकर बजाने वाले भरतकालीन मृदंग के दो भागों का प्रयोग ख्याल गायकी के साथ एक स्वतंत्र तालवाद्य के रूप में होगा, जो यवन काल में कुछ परिवर्तन के पश्चात तबला जोड़ी के नाम से प्रसिद्ध हुआ होगा। अन्य कुछ लोग प्राचीन अवनद्यवाद दरदुर एवं नक्कारों का संबंध तबला की जोड़ी से मानते हैं। उपर्युक्त वर्णित प्रचलित मतों का विश्लेषण करने के से स्पष्ट होता है कि प्रथम मत के अनुसार तबला लोकवाद से संबंधित है, जबकि शेष दो मतों के अनुसार यह भरतकालीन तालवाद्यों से संबंधित है। पृष्ठ संख्या 114। यद्यपि प्रामाणिक इतिहास के अभाव में हम किसी एक मत का प्रतिपादन नहीं कर सकते, तथापि इतना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तबला पूर्णतः एक भारतीय तालवाद्य है जो अन्य स्वरूपों में इस देश में था। पिछले कुछ वर्षों तक विद्वानों एवं संगीतज्ञों में एक भ्रामक धारणा व्याप्त थी कि हजरत अमीर खुसरो जो दिल्ली दरबार में सन 1275 से 1325 ईस्वी तक दरबारी कलाकार के रूप में पदाधिकारी थे, उन्होंने तबले का आविष्कार किया। इसका कारण मात्र यह था सन 1855 ईस्वी में हकीम मोहम्मद करम इमाम द्वारा उर्दू भाषा में लिखी गई पुस्तक मौदन उल मूसिकी में तबले के आविष्कारक का नाम अमीर खुसरो लिखा हुआ है। इतिहास साक्षी है कि हजरत अमीर खुसरो ने अपने जीवन काल में गुलाम खिलजी एवं तुगलक वंश के 11 सुल्तानों को दिल्ली के तख्त पर आसीन होते देखा था। वे अधिकतर बादशाहों के कृपा पात्र रहे, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में उनका एक विशिष्ट स्थान था। वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि व्यक्ति एवं प्रतिभा संपन्न कवि थे। उनको भारतीय संगीत प्रिय था, जबकि वे फारसी संगीत के पंडित थे। उन्होंने उस समय जनता की बदलती हुई रुचि का अध्ययन कर किया और दोनों संगीत शैलियों का सुंदर समन्वय करके भारतीय संगीत को एक नवीन दिशा दी। अमीर खुसरो ने निस्संदेह अपनी कला कौशल से भारतीय संगीत को समृद्ध किया एवं कई नवीन तालों की रचना करके ताल शास्त्र के भंडार को धनी बनाया, किंतु वे तबले के आविष्कारक थे। यह धारणा निर्मूल है। किसी भी मध्यकालीन पुस्तक में तबले के जन्मदाता के रूप में खुसरो का उल्लेख नहीं मिलता। हजरत अमीर खुसरो ने अपनी फारसी कृति एजाजे खुशरवी में बादशाह के सम्मुख बजाए जाने वाले जिन वाद्यों का उल्लेख किया है, उनमें तबल भी एक है। फारसी भाषा में प्रत्येक अवनद्य वाद्य के लिए तबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। तबल का अर्थ है वे वाद्य जिनके ऊपर का चमड़े का आवरण सपाट सरफेस हो। मृदंग, भेरी, नक्कारा आदि सभी अवनद्य वाद्य इस श्रेणी में आते हैं। अतः खुसरो ने अपने ग्रंथ में तबल शब्द का प्रयोग किए किस अर्थ में किया है, यह कहना कठिन है। अबुल फजल ने आईने अकबरी में अकबर युग की के 36 संगीतकारों के नाम गिनाए हैं, किंतु उनमें एक भी तबला वादक का उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने तबला वाद्य का उल्लेख तक नहीं किया है। इतना ही नहीं, मोहम्मद शाह रंगीले के युग तक सन 1719 से 1748 तक कहीं किसी पुस्तक में हमें तबला वाद्य का तबला वादकों की कोई चर्चा नहीं मिलती। आचार्य कैलाश देव बृहस्पति जनाब रशीद मलिक साहब की उर्दू पुस्तक हजरत अमीर खुसरो का इल्मे मूसिकी और दूसरे मकालात के पृष्ठ 111 के आधार पर संगीत चिंतामणि में लिखते हैं कि हमें इस बात की प्रामाणिक शहादत मिलती है कि 11वीं सदी के आरंभ में तबले का रिवाज यहाँ हो चुका था। हजरत अमीर खुसरो के जन्म से सैकड़ों वर्ष पहले तबला भारत में था। इसके आविष्कार से हजरत अमीर खुसरो का कोई संबंध नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि तबल फारसी शब्द है। पृष्ठ संख्या 115। और अंतिम मुगल बादशाह शाह आलम तक के युग में हमें किसी तबला वादक का नाम नहीं मिलता। अतः हम जनाब रशीद मलिक से सहमत है कि हजरत अमीर खुसरो तबले के आविष्कारक नहीं हैं। 13वीं सदी के पूर्व भारत में तबले का अस्तित्व था, ऐसा मोहम्मद करम इमाम ने भी लिखा है। उनके अनुसार सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कलाकारों की संगत के लिए जो ताल वाद्य प्रयुक्त होता था, वह आज की तबले बाएं की जोड़ी से बहुत साम्य रखता था। अंतर केवल इतना था कि उन पर स्याही नहीं लगती थी। तबले के अस्तित्व को स्वामी प्रज्ञानंद जी ने प्राचीन मंदिरों की शिल्पाकृतियों के आधार पर प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है। उनके अनुसार आधुनिक तबला बायां प्राचीन त्रिपुष्कर के ऊर्ध्वक एवं आलिंग का परिष्कृत रूप है। पृष्ठ संख्या 116। सुप्रसिद्ध संगीताचार्य ठाकुर जयदेव सिंह तबले को प्राचीन भारतीय लोकवाद्य का परिष्कृत रूप और तबला शब्द तबल का अपभ्रंश मानते हैं। उनके अनुसार तबला अपने परिष्कृत रूप में प्राचीन काल से ही भारत में आया था, किंतु 18वीं सदी तक न तो उसे आज की तबला जोड़ी जैसा रूप प्राप्त हुआ था और न ही वह अधिक प्रचार में था। यही कारण है कि मोहम्मद शाह रंगीले के युग तक हम तबले की चर्चा कहीं नहीं पाते। इस विषय में आचार्य बृहस्पति का निम्न मंतव्य भी उन विद्वानों के अनुकूल है। मोहम्मद शाह रंगीले की मृत्यु सन 1748 के 49 वर्ष पश्चात संग्रहित ग्रंथ नादिराती शाही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की कृति है, जिसकी प्रथम पांडुलिपि सन 1711 ईस्वी में शाह आलम ने स्वयं तैयार कराई थी। तबले की चर्चा उसमें भी नहीं है। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के प्रत्यक्षदर्शी लेखक दरगाही कुली ने पखावज, ढोलक, घड़ा, पेट आदि अनेक तालवाद्यों की चर्चा की है, किंतु किसी तबला वाद्य की नहीं। आचार्य बृहस्पति के अनुसार तबले के आविष्कर्ता मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार के प्रतिभा संपन्न कलाकार उस्ताद खुसरो खां थे। खुसरो खां सदारंग के छोटे भाई थे तथा वे अनेक वाद्य वादन में पारंगत थे। उनके मतानुसार खुसरो खां ने सितार वाद्य की संगति के लिए तबले का आविष्कार किया और उस पर सितारखानी ठेके का प्रचार किया। इसको स्पष्ट करते हुए वे लिखते हैं कि तबले का आविष्कार मोहम्मद शाह रंगीले के युग में खुसरो खां सदारंग के छोटे भाई ने किया था। उस युग से पहले इस वाद्य और उसके वादकों की चर्चा कहीं नहीं है, परंतु इस वाद्य के आविष्कार को अमीर खुसरो के मत्थे मढ़ देने का श्रेय मौदन उल मौसिकी के लेखक मोहम्मद करम इमाम को ही है। संभव है कि नाम साम्य के कारण लोग खुसरो खां को अलाउद्दीन कालीन अमीर खुसरो समझ बैठे हों। तबले के आविष्कर्ता के विषय में कुछ और मत मतांतर एवं भ्रामक धारणाएं कला रसिकों में व्याप्त है, जिन्होंने यहाँ स्पष्ट कर देना आवश्यक होगा। ताल प्रकाश में श्री भगवत शरण शर्मा लिखते हैं कि पाश्चात्य विद्वान श्री स्ट्राबो साहब ने लिखा है कि एशिया खंड के जंगली लोगों में प्राचीन काल में नबला नामक एक वाद्य प्रचलित था। हो सकता है कि हमारा तबला उस नबला का अपभ्रंश हो। ताल प्रकाश की प्रस्तावना में पंडित किशन महाराज लिखते हैं, कितने लेखों का यह मत है कि खब्बे हुसैन ढोलकिया जब सुप्रसिद्ध मृदंग वादक श्री कुदो सिंह जी से बजाने में पराजित हुए तो कुदो सिंह ने जी ने तलवार से उनकी उंगलियां काट ली। पृष्ठ संख्या 117। इस पर खब्बे हुसैन ने दाहिने की बाएं हाथ से अभ्यास करके बोलों में काफी मुलायमियत मिठास पैदा की, जिसे सुनकर कुदो सिंह बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत खब्बे हुसैन ने ही मृदंग काट कर खड़ा कर दिया और उसका नाम तबला रखा। इस प्रकार की सारी बातें केवल अप्रमाणित ही नहीं असंगत भी लगती हैं। जो व्यक्तिगत तर्क एवं कपोल कल्पित कहानियों के सिवा और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी तर्कहीन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। कुछ विद्वानों ने तबले को विदेशों से आया माना है। उनके अनुसार वह अरेबियन, सुमेरियन, मेसोपोटेमियन तथा फारसी संस्कृति से संबंधित विदेशी तालवाद्य है। प्राचीन काल में अरेबियन में तबला और नक्कारा जैसे वाद्य सैनिकों को युद्ध में प्रोत्साहित करने हेतु प्रयुक्त होते थे। घोड़े या ऊंट की पीठ पर रख करके वह लकड़ी से बजाया जाता था, जिसे तबल जंग कहा जाता था। अरब देशों में आज भी तबल जंग प्रसिद्ध वाद्य है, जो कमर पर बांधकर तथा ऊंट की पीठ पर रखकर लकड़ी से बजाया जाता है। कुछ लोगों की धारणा है कि इसी तबल गंज से तबला बना है, अतः तबला विदेशी वाद्य है और यवनों के साथ भारत आया है। किंतु तबल जंग से मिलता जुलता एक वाद्य राजस्थान में आज भी मिलता है। कहते हैं कि उसे भी युद्ध के समय बजाया जाता था। तबल जंग भले ही विदेशी वाद्य हो, किंतु उससे आज के हमारे तबले से कोई संबंध नहीं है। बनारस के डॉक्टर के एन भौमिक अपने एक लेख में लिखा है, इट इज हिस्टोरिकल नोन दैट तबला एक्यूपाइड द प्रोमिनेंट प्लेस एमॉन्ग दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन अरेबियन अरबिया लॉन्ग बिफोर द बर्थ ऑफ इस्लाम। इन एंशियंट अरबिया तबला वाज अ पॉपुलर फोक इंस्ट्रूमेंट यूज बाई वुमेन। इट इज सेड दैट वन तबल सन ऑफ म्यूजिशियन जुबल इन अरेबिया इज द इन्वेंटर ऑफ तबला। यहाँ डॉक्टर भौमिक ने यह पुष्टि करने का प्रयत्न किया है कि अरब देश के किसी जुबल नाम के संगीतकार ने के बेटे तुबल ने अति प्राचीन काल में तबले का आविष्कार किया और तत्पश्चात मुसलमानों के साथ तबला भारत आया। किंतु उनका यह कथन सर्वथा अयोग्य है। संभव है कि तुबल का तबला अरबिस्तान का कोई वाद्य हो, किंतु हमारे तबले से इसका कोई संबंध नहीं है। भारत में मुसलमानों के आगमन के 1200-1300 वर्ष पूर्व तबले का प्राचीन रूप यहाँ था। अतः यह कहना कि तबला मुसलमानों के साथ पश्चिम एशिया से भारत में आया अनुचित है। एक पृष्ठ संख्या 118। यूं 16वीं से 17वीं शती के पूर्व अनेक गुफाओं एवं मंदिरों के शिल्पों में तबले सा सदृश अनेक वाद्य देखने को मिलते हैं। डॉक्टर बीसी देव के अनुसार तालवादी की जोड़ी की एक शिल्पाकृति प्राप्त हुई है जो 6ठी सदी की है। ईसा की 6ठी सदी के बादामी के एक शिल्प में तबला डग्गा जैसे वाद्य को बजाते हुए एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। उस शिल्प में दाया वाद्य ऊंचा है जबकि बायां उससे बिल्कुल आधा है। यह शिल्पाकृति ही आधुनिक तबले डग्गा का प्रारंभिक रूप क्यों न हो, ऐसी संभावना प्रोफेसर जी एच तारलेकर तथा श्रीमती नलिनी तारलेकर ने अपने पुस्तक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल इन इंडियन सल्पचर में व्याप्त की है। उनके अनुसार बजाने में असुविधा होने के कारण आगे चलकर दोनों वाद्यों की ऊंचाई एक सी कर दी गई होगी। इस विषय पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं, इन वन बादामी स्कल्पचर टू ड्रम आर सीन प्लेड बाई अ मैन सीटिंग ऑन द राइट सीट। द ड्रम ऑफ द लेफ्ट हैज ब्रॉड फेस एंड इज अबाउट हेल्फ ऑफ द अदर ड्रम इन हाइट्स। द पेयर वुड करस्पॉन्ड टू मॉडर्न डे यूजली प्लेस्ड टू द राइट एंड बाया विद द डिफरेंस दैट द दाया एंड बाया आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन हाइट। इस शिल्पाकृति का चित्र नीचे दिया जा रहा है, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन इंडियन स्कल्पचर के पृष्ठ 90 पर चित्रित है। बादामी का यह शिल्प ईसा की 6ठी सदी का है, किंतु इसके 800 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा पूर्व 200 वर्ष की एक बौद्ध गुफा में हमें इस इंद्र शिल्प मिलता है। इसमें तबले जैसे वादिका तथा इसकी वादिका का स्पष्ट चित्रांकन किया गया है। महाराष्ट्र के पुणे नगर के निकट भाजा नाम की एक गुफा बौद्ध धर्म के हीनयान पंथ के उन्नति काल में सिंह राजाओं के समय की है, ऐसा पुरातत्व विभाग की पत्रिका में निर्देश मिलता है। भाजा की इन गुफाओं पर सिंह कला की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। गुफा नंबर 14 तूर्य शिल्प और इंद्र शिल्प के नाम से प्रसिद्ध है। गुफा के प्रमुख द्वार की बाई ओर एक छोटा सा गर्भ द्वार है, जिसकी दीवार पर बाई ओर सूर्य शिल्प एवं दाहिनी ओर इंद्र शिल्प अंकित है। पृष्ठ संख्या 129 पर प्रस्तुत इंद्र शिल्प लगभग 12 फीट ऊंचा है। उसमें इंद्र एरावत पर गज संचालन कर रहे हैं। उनके पीछे एक ध्वज वादक है, वाहक है। उसमें उद्यान का भी कुछ दृश्य है। उसके नीचे एक नृत्य गोष्ठी का चित्रांकन है। शिल्प में आसन पर बैठे राजा को एक चामर धारिणी स्त्री चामर हिला रही है। सामने एक नर्तकी नृत्य कर रही है एवं एक वीणा वादक वादन में निमग्न है। पास में ही एक स्त्री वादिका खड़ी है, जो सामने रखे दो चर्मवाद्य तालवादियों को दोनों हाथों से बजा रही है। उस तालवादिका के सामने जो वाद्य की जोड़ी देखी जाती है, वह निश्चित रूप से तबला जैसा कोई वाद्य है, जो आधुनिक तबले डग्गे का पूर्वज लगता है। मूर्ति के उस भाग की ऊंचाई केवल 9 इंच है। उस तालवाद्य शिल्प के गट्टे, बद्धी, स्याही आदि स्पष्ट रूप से नहीं दिखते। वादिका के दोनों हाथ वादन मुद्रा में रखे दिखलाए गए हैं, अतः स्याही का भाग अस्पष्ट है। लगभग 2100 वर्ष पूर्व प्राचीन मूर्ति में इस प्रकार की कुछ कमियां स्वाभाविक ही है, किंतु यह प्राचीन भाजा शिल्प तबले के पूर्व रूप का स्पष्ट एवं प्रामाणित अंकन करता है। आधुनिक तबला जोड़ी के साथ उसका सामंजस्य स्पष्ट दिखता है, तथा इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ईसा पूर्व द्वितीय सदी में तबले जैसे वाद्य का प्रचलन भारत में था, तथा उसे बजाने वाली महिलाएं भी थीं। उन दिनों उसका उपयोग कदाचित लोग वाद्य के रूप में होता होगा, तथा उसका नाम भी कुछ और रहा होगा। वाद्यों के शिल्पों पर आज तक जो विविध पुस्तकें लिखी गई हैं, उनमें इंद्र शिल्प के वीणा वादक का तो वर्णन है, किंतु इस वाद्य वादिका की ओर किसी का ध्यान नहीं गया। भाजा गुफा जो लोनावला महाराष्ट्र की से लगभग 5 किलोमीटर दूर मुंबई पुणे मार्ग पर स्थित है, इसका प्रवेश द्वार। पृष्ठ संख्या 121 यहाँ भाजा गुफा के इंद्र शिल्प के कुछ चित्र प्रस्तुत हैं। पृष्ठ संख्या 120 पे चित्रित चित्र अंकित हैं। विश्वास है कि वे तबला वाद्य की प्राचीनता एवं भारतीयता के विवादास्पद प्रश्न को सुलझाकर उसे नवीन मोड़ देने में सफल होंगे। महाराष्ट्र के सह्याद्री पहाड़ में अंकित यह गुफा शिल्प समय की थपेड़ खाकर कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, अतः फोटोग्राफिक चित्रांकन में अपेक्षित स्पष्टता नहीं है। इस प्रकार यहाँ शिल्पाकृति के आधार पर तबले की उत्पत्ति को प्रमाणित किया गया है, जो लेखिका के मतानुसार सर्वाधिक तर्कसंगत एवं बुद्धिग्राह्य है। कलाकार अपने युग का प्रतिनिधि होता है। वह जो कुछ अपने सामने देखता है, उसे अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करता है। प्राचीन काल में सामाजिक अवसरों पर तबले जैसे वाद्य बजते रहे होंगे, तभी तो उनका चित्रण शिल्पकारों ने किया है। अतः भाजा गुफा के प्रस्तुत शिल्प उन दिनों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक लोक जीवन के प्रतीक हैं। रामायण तथा महाभारत में मृदंग तथा डिमडिम का उल्लेख है, किंतु महाकाव्य काल में तबले जैसे किसी वाद्य की कोई चर्चा नहीं है। अतः ऐसा अनुमान है कि महाकाव्य काल के पश्चात उसका प्रवेश सांस्कृतिक जीवन में हुआ होगा, जो तत्पश्चात सामान्य लोक जीवन में घुल मिल गया होगा। 15वीं शताब्दी के पश्चात अभिजात संगीत में जिस ताल वाद्य का प्रवेश हुआ, उसे तबला नाम दिया गया। यह फारसी भाषा के शब्द तबल का अपभ्रंश है। मुस्लिम काल में फारसी राजभाषा होने के कारण उसका प्रभाव तबला के नामकरण पर भी पड़ा। यह निर्विवाद है कि आज के तबला जोड़ी का रूप, आकार एवं सज्जा सदियों के निरंतर परिवर्तनों का प्रतिफल है।